दिन भर तारीख 14 जुलाई दिन मंगलवार। मैं हूं विनीत खरे। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने चेन्नई और राजस्थान की आईपीएल टीमों पर 2 साल का और मैयप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगाया।
देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है।
आईपीएल अपने फोकस से डाइवर्ट हो गया।
मुझे लगता है कि चार्म काफी खत्म हो रहा था।
ईरान के साथ हुआ परमाणु करार।
ईरान की तरफ से तो ये डेफिनेटली फायदेमंद है। जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी थे वो सब चाह रहे थे कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आए।
कार्यक्रम में समझेंगे इस परमाणु करार का मतलब और प्रतिक्रिया जानने चलेंगे अमेरिका। और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाद के घर और दफ्तर पर सीबीआई के छापे। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। आईपीएल में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच करने वाली लोधा समिति ने आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इस समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा को गैर कानूनी सट्टेबाजी का दोषी पाया और उन्हें क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले बहुप्रतीक्षित समझौते की आज घोषणा हुई। वार्ताओं के लंबे दौरों के बाद हुए इस समझौते में ईरान के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएंगे और इसके बदले ईरान की निगरानी की जाएगी ताकि वो परमाणु हथियार ना बना सके। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी फेडरिका मोगेरिनी ने इस समझौते को पूरी दुनिया के लिए आशा का संकेत बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी समझौते का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने समझौते का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ प्रतिबंध फिर से लगा दिए जाएंगे।
All of this will be memorialized and endorsed in a new United Nations Security Council.
इस सभी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा और पारित कराया जाएगा। और अगर ईरान इस समझौते का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सभी प्रतिबंधों को फिर से लगा दिया जाएगा। ईरान के लिए इस पर अमल करने के तमाम अच्छे कारण मौजूद हैं और इसका पालन न करने पर उसके परिणाम भी उसके सामने होंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। उधर ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस समझौते पर कहा है कि एक गैर जरूरी सा संकट हल कर लिया गया है और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ईरान ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को ऐतिहासिक गलती बताया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आज एक धार्मिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 27 लोग मारे गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों लोग महापुष्कारलू उत्सव की शुरुआत के मौके पर गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जमा थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की ब्रसेल्स में बैठक हो रही है जिसमें ऐसे तरीके तलाशे जाएंगे ताकि ग्रीस कर्ज को चुकाने की अपनी तत्काल जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। यूरो ग्रुप के प्रमुख येरोन डिसेल ब्लोइम ने कहा कि वित्त मंत्री ग्रीस की आर्थिक मदद के लिए लघुकालीन नकदी देने के बारे में चर्चा करेंगे। कल ही ग्रीस को तीसरा बेलआउट पैकेज देने पर सहमति हुई है, लेकिन इसके लिए ग्रीस की संसद को कई बड़े कानूनी बदलावों को मंजूरी देनी होगी। और म्यांमार के सरकारी मीडिया का कहना है कि देश की नौसेना ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान अपने दक्षिणी तट के पास एक छोटे से द्वीप से 100 से ज्यादा लोगों को बचाया है और ये सभी बंगाली हैं जिन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को आईपीएल 6 में कथित सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में दोषी पाया और दोनों पर क्रिकेट संबंधी गतिविधि में भाग लेने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा चेन्नई और राजस्थान की आईपीएल टीमों पर भी 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र लोधा ने कहा,
द फैक्ट दैट गुरुनाथ मैयप्पन फॉर्म्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीएसके
जस्टिस लोधा कह रहे थे ये एक तथ्य है कि गुरुनाथ मैयप्पन सीएसके का अहम हिस्सा हैं और ज़्यादातर लोग उन्हें टीम के चेहरे के तौर पर ही पहचानते थे। वो सीएसके टीम के अधिकारी थे, उन्हें इस तरह की भ्रष्ट सट्टेबाजी में नहीं लिप्त होना चाहिए था। आईपीएल के मैचों के दौरान भी उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधी कोड का उल्लंघन किया। अगर मीडिया में आई खबरों के दौरान उन्हें किसी प्रकार का दुख भी पहुँचा तो जितना इस खेल की छवि को आईपीएल और बीसीसीआई को नुकसान पहुँचा है वो इसके मुकाबले बहुत छोटा है। ये थे चीफ जस्टिस राजेंद्र लोधा के शब्द, पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र लोधा के शब्द। राजेंद्र लोधा ने कहा कि समिति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वर्ष 2013 के आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी के दौरान के आरोपों के बाद इस समिति का गठन किया गया था। मई 2013 में गिरफ्तारी के बाद श्रीसंत और अंकित चौहान जैसे क्रिकेटरों पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
आईपीएल 6 में कथित स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामले सामने आने से जैसे क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ही आ गया। इससे पहले भी आईपीएल की शाम की पार्टियां, हरभजन सिंह का श्रीसंत को थप्पड़ मारना, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान का मुंबई में पिच पर जाना और बाद में उनके स्टेडियम में घुसने पर ही प्रतिबंध लगना जैसी बातें आईपीएल की छवि को खराब कर रही थी। लेकिन बाद में तो सीधे सीधे साफ ही हो गया कि चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मैयप्पन के सट्टेबाजों से संबंध थे। इतना ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को भी सट्टेबाजी में लिप्त पाया गया। आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा पर क्रिकेट संबंधी गतिविधियों में भाग लेने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर भी 2 साल का प्रतिबंध लगा। इस फैसले को लेकर जाने माने क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
मेरे ख्याल से लोढ़ा साहब ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, उनकी कमिटी ने, आने वाले टाइम में इसका बहुत महत्व है क्योंकि एक क्लियर मैसेज दिया है कि करप्शन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इतनी दो बड़ी टीमें जो दो फॉर्मर चैंपियंस रही हैं आईपीएल की, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए सस्पेंड किया है और एंटी करप्शन यूनिट ने अच्छा काम किया, ऑब्वियसली उसको माना गया है क्योंकि उनकी बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया गया है।
फैसला आया लेकिन कई सवाल साथ लाया, सवाल भी ऐसे जो सीधे सीधे बीसीसीआई और खिलाड़ियों से जुड़े हैं। एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
खास करके दुबई में जहां पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है और जहां पर आजकल फिलहाल एन श्रीनिवासन चेयरमैन है आईसीसी के, तो इसके बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक ब्रॉडकास्टर्स है, स्पॉन्सर्स है, प्लेयर्स है, सपोर्ट स्टाफ है, सब पर इसका प्रभाव इम्पैक्ट बहुत जरूर होगा।
तो फिलहाल जैसी स्थिति है उस स्थिति से उपजे सवालों का समाधान क्या हो, विजय लोकपल्ली कहते हैं,
6 टीम की आईपीएल करके इनको देखना चाहिए क्योंकि मैचेस में कंपटीशन बहुत होगा। ऐसे ही मैचेस में करप्शन आता है, जब आप कोई ऐसा मैच खेलते हैं जिसका मायने नहीं है अगर रैंकिंग पे या टूर्नामेंट की पॉइंट्स टैली में, तो एक्सपेरिमेंट दौर पे आप 6 टीमों का आईपीएल करा के देखिए।
अगर 6 टीमें हो गई तो राजस्थान रॉयल्स के अजिंक्य रहाणे, स्टुअर्ट बिन्नी और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों का क्या होगा। इसके अलावा स्टार खिलाड़ी तो चेन्नई सुपर किंग्स से भी जुड़े हैं और क्या गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा को आईपीएल से बाहर रखकर ही इसकी छवि सुधर जाएगी, क्या बड़ी मछलियां अभी भी बाहर नहीं हैं। अयाज मेमन,
न सिर्फ जो खिलाड़ी आपने नाम लिए बल्कि उनके अलावा एमएस धोनी भी हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहे हैं। सवाल केवल स्टार प्लेयर्स का नहीं है, कम से कम 100 ऐसे लोग हैं, प्लेयर्स, स्पोर्ट स्टाफ, ट्रेनर्स, मैस्योर्स, कोचेस वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो एक जॉब से बाहर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है एक खतरा भी खड़ा हो सकता है बीसीसीआई को कि राइवल लीग्स जो आ रहे हैं, किसी ना किसी को एक आइडिया आ सकती है कि भाई एक नया लीग शुरू कर सकते हैं, तो एक खतरा भी बन सकता है। बाकी भी प्लेयर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने गलत काम किए और वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं फ्रीली, ये कहना गलत होगा लीगली, लेकिन माहौल आईपीएल का कुछ ऐसा था, एक तरह से जैसा कसीनो का माहौल हो जिसमें लोग आते हैं, आप जुआ खेले ना खेले लेकिन आप तफरी लेते हैं, मजा लेते हैं, एक लाइसेंशियस परमिसिव एटमॉस्फेयर था। लेकिन जो संभालते हैं इंडियन क्रिकेट को, उनको ये इस बात पर बड़ी तवज्जो देनी होगी कि आगे जाते हुए क्या करना चाहिए, किस तरह से इस टूर्नामेंट को संभाल सकते हैं।
गुरुनाथ और राज कुंद्रा, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दंड मिला, लेकिन उस लिफाफे का क्या होगा जो अभी तक बंद पड़ा है। आखिरकार पूरी सफाई तो तभी मानी जाएगी जब हर कोना साफ हो।
ये थे आदेश कुमार गुप्ता। और थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले, राज कुंद्रा ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो आदेश है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने आदेश की एक कॉपी मांगी है और इस आदेश से वो बहुत आश्चर्यचकित और हताश हैं। साथ ही उन्होंने एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट में, फेथ, हैशटैग फेथ यानी विश्वास। और इस आदेश पर आम लोगों से हमने प्रतिक्रिया जानी, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और इससे आने वाले टाइम में करप्शन बहुत कम होगा। और जैसे आईपीएल को लोगों ने एक बिजनेस का धंधा बना लिया था और इससे क्या बैटिंग चलती थी और स्टोरियों की काफ़ी मार्केट चलती थी, तो इससे वो कम होगी, काफ़ी हद तक कम होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आने वाले।
आईपीएल जिस कॉन्सेप्ट को लेकर स्टार्ट हुआ था कि न्यू कमर्स को मौका मिलना चाहिए, तो राइट फ्रॉम फर्स्ट आईपीएल अपने फोकस से डाइवर्ट हो गया। फॉरेन के प्लेयर जो वेल नोन अच्छे खिलाड़ी थे, टीमों ने वो खरीदने स्टार्ट किए। इंडियंस टीम ने जो डोमेस्टिक प्लेयर लिए वो भी वेल नोन थे जो कि ऑलरेडी टीम में थे।
मेरे हिसाब से ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ये बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल में पैसों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था वो खेल पर असर डाल रहा था, जिसके कारण खेल भावनाओं से कम खेला जा रहा था और स्टोरियों का इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा था और ये पैसों का गेम हो चुका था, तो इसे बैन करना जरूरी था। खिलाड़ियों पे किसी तरह का भी असर नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर एक टीम बैन होती है तो दूसरी टीम इसको रिप्लेस करेगी। जब दूसरी बार ऑक्शन होगी तो इसके रिप्लेस में दूसरी टीमें आएंगी, हो सकती है रांची के लिए बन जाए कुछ टीमें, साउथ की कुछ टीमें बन जाए, कुछ और स्टेट की, कुछ और नए प्लेयर्स इसमें आ जाएंगे जो अच्छे होंगे। इस वर्डिक्ट से आने से ये होगा कि जो लोग करप्ट थे वो आने से बचेंगे इसमें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी एजेंसीज काफ़ी अच्छी काम कर रही है।
आई थिंक टीम्स पे विल टेक इट एज अ लेसन टू देम कि आगे से वो स्पॉट फिक्सिंग या इन सब में नहीं इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है कि चार्म काफ़ी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि ये सब जैसी सट्टेबाजी होती है तो लोग स्पॉन्टेनियस क्रिकेटर्स क्रिकेट नहीं देखते हैं, वो पहले से फिक्स क्रिकेट देखते हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि जब आप स्पॉन्टेनियस क्रिकेट देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है एंड हम लोग इन्जॉय कर पाते हैं क्रिकेट को। एंड एज इंडियंस हम जितना पसंद करते हैं क्रिकेट को, दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ रियली शोन कि जो क्रिकेट फैंस का लव है क्रिकेट के लिए और जो इंडियंस का लव है क्रिकेट के लिए, इट्स रियली गुड। आई मीन इसको बढ़ावा मिला है।
ये तो थी दिल्ली की आम जनता, लेकिन आज जो आदेश आया इस पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जुबैर अहमद ने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार आशीष शुक्ला से।
देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो बीसीसीआई के पहले के सरताज थे श्रीनिवासन, और अब जब रिजीम चेंज हुआ है तो ये तो माना जा सकता है कि बीसीसीआई के पाले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और पुराने लोगों को दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झंडी दिखा दी है, लोधा कमेटी ने झंडी दिखा दी है, और ना केवल व्यक्तिगत रूप से लोगों को नुकसान पहुंचा है जिसमें राज कुंद्रा और गुरुनाथ मैयप्पन का नाम लिया जा सकता है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चरली जो हैवी वेट्स हैं आईपीएल के, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जो कि विनर्स भी रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि एक रिवोल्यूशन कह लें या किसी तरह से भी कह लें, लेकिन ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है क्रिकेट प्रेमियों के लिए और इस देश के क्रिकेट के लिए।
क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इसके?
देखिए, सबसे पहला तो इम्प्लीकेशन यही कि आईपीएल को फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो 8 टीमों का और 8 हफ्ते का और जो 74 मैचों का जो एक सिलसिला हुआ करता था वो छोटा होगा। इसके साथ जो भी कमर्शियल नुकसान होने हैं इंडिविजुअल्स को और जो स्पॉन्सर्स हैं, और किस तरह से, सबसे बड़ी बात है जो ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीविजन नेटवर्क है जिसने असली पैसा लगाया है आईपीएल में, उसको किस तरह से बीसीसीआई के देखे, क्योंकि वो मुकदमा भी कर सकते हैं और इसका हर्जाना बहुत बड़ा मांग सकते हैं। आईपीएल चल तो टेलीविजन की वजह से ही रहा है, और अगर टेलीविजन ही उतने पैसे रेज नहीं कर पाएगा और टेलीविजन कहेगा कि जो हमारे आपके बीच में करार हुआ है वो करार अब पूरा नहीं हो पा रहा है, हम इससे हटना चाहते हैं या हम इतना कॉम्पनसेशन चाहते हैं, ये जलजला कह लें आप, इसको सुनामी कह लें आप।
तो ये जो 2 टीमें 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं, तो क्या इससे जो इसकी अहमियत है आईपीएल की या जो इसमें ग्लैमर एंड ग्लिट्स देखा जाता था उसमें बहुत कमी हो जाएगी?
देखिए, ग्लैमर तो एक तरफ का बात है, सबसे बड़ी बात है धब्बा कितना पड़ा है। आपको एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस देश की सबसे बड़ी लॉ एजेंसी है,
अदालत,
जो लॉ ऑफ द लैंड है, अगर वो इसको नकारात्मक रूप से देख रही है और उन लोगों के साथ जा रही है जो मानते आए हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल का स्ट्रक्चर जो है वो दूषित है और उसमें गंदगी है, तो आप ये समझ लें कि जो हुक्मरान है क्रिकेट के वो बच नहीं पाएंगे, उनको हर तरह से इसको क्रिकेट को साफ करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा और ये परतें और पे और खुलेगी।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार आशीष शुक्ला।
सदियों से गूंजती आवाजें।
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में।
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो विश्वास में
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
महीनों की बातचीत के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आज एक सहमति बन गई है। बातचीत में शामिल ईरान और 6 देशों के प्रमुखों ने इस बात पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस समझौते से साबित होता है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए दशकों के तनाव को खत्म किया जा सकता है। इस समझौते की पूरी रूपरेखा भी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस समझौते में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का एक टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों के सार के साथ प्रगति सक्सेना।
ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और रूस के बीच इस समझौते पर बातचीत करीब 2 सालों से चल रही थी। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1 दशक पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों में शामिल हो गया था। हालांकि ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन दुनिया में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र, अमरीका और यूरोपीय संघ ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस समझौते से ये उम्मीद बंधी है कि इन प्रतिबंधों की मार से ईरान की अर्थव्यवस्था अब उबर जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस परमाणु समझौते का स्वागत किया है। ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ ने कहा कि ये समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ है जिससे उम्मीद का एक नया अध्याय शुरू होगा।
Let me begin by expressing my appreciation to everybody, to those who started this process.
मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया और जो इस प्रक्रिया से जुड़े रहे ताकि सबके लिए एक फायदेमंद समझौता तैयार किया जा सके। मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक पल है। हम एक ऐसे समझौते पर पहुंच रहे हैं जो किसी के लिए भी पूर्ण तो नहीं, लेकिन हम इसी समझौते पर पहुँच सकते थे और ये एक अहम उपलब्धि है। अब हम उम्मीद का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं।
ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ के शब्द। यूरोपीय संघ की विदेशी नीति की सचिव फेडरिका मोगेरिनी ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। फेडरिका कह रही हैं,
The decision we are going to take today is not only on Iran's nuclear program, but it is much, much more than this.
आज हम जो फैसला ले रहे हैं वह सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ही नहीं है, वह इससे कहीं ज्यादा है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा। पूरी दुनिया के लिए ये एक नई उम्मीद है और हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में इसकी कितनी जरूरत है। लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू भी है। इसराइल इस समझौते की खबर से बहुत खुश नहीं है। इसराइल का मानना है कि इस समझौते के बाद ईरान दुनिया के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक गलती बताया तो इसराइल के पूर्व उप विदेश मंत्री डैनी आयलन का कहना है कि ये समझौता पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है।
The results of the agreement is very bad. It's actually putting Iran now in a position to really further its ambition.
इस समझौते का नतीजा बहुत खराब होगा। इससे ईरान अब ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वह दुनिया की एक प्रभावशाली ताकत बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएगा और मध्य पूर्व पर हावी हो सकेगा। आपको समझना होगा कि परमाणु कार्यक्रम ईरान के लिए एक माध्यम है जिससे वो चरमपंथ को बढ़ाने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है।
डैनी आयलन के शब्द। तमाम शको शुबह के बावजूद इतने वर्षों के बाद एक समझौते पर पहुंचना काबिले तारीफ तो है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्वक कुछ ऐसी शर्तों पर पहुंचना चाहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार तनाव की स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद नहीं, इसका एहसास अब ताकतवर देशों को भी हो चला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण रिश्तों की ये मंशा इस समझौते को सफल बनाएगी।
ये थी प्रगति सक्सेना, और इस सहमति के मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले संपर्क किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिसर्च के वर्ल्ड अफेयर्स के रिसर्च फेलो आसिफ शुजा से।
ईरान की तरफ से तो ये डेफिनेटली फायदेमंद है, जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी थे वो सब चाह रहे थे कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। जैसे अहमदीनेजाद के जमाने में हम लोग रिकॉल करें कि उनका जो स्ट्रिंजेंट पोजीशन था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ईरान अल्टीमेटली आया है, इसका मतलब ये है कि कुछ इसको पाना है और कुछ इसको खोना है। इसने पाया क्या है, क्या खोया है, इसको अगर हम लोग वेट करें तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट था कि जो मिलिट्री साइट्स है वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ये चैलेंज कर सकता है, लेकिन चैलेंज करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि जिसको चैलेंज करेगा जो कमिटी फॉर्म होगी वो इन्हीं सारे पावर्स की होगी। P5+1 है, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उस कमिटी में होंगे। ईरान ने खोया ये है कि पहले इसका एक स्ट्रिंजेंट एक पोजीशन था कि मिलिट्री साइट या अननाउंस इंस्पेक्शन वो तैयार उसके लिए नहीं था, अब वो तैयार है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर साइट पे वो इंस्पेक्शन करा सकता है। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ईरान के लिए वो ये है कि पोटेंशियली ईरान क्या कर सकता था। ईरान ये कर सकता था कि एक साल के अंदर में या विद इन अ फ्यू मंथ इट कुड हैव गॉट न्यूक्लियर वेपन, जिसको रोक दिया गया है। तो अगर ईरान ने क्या पाया और क्या खोया, अगर इस चीज का आकलन आप करें,
रोक दिया गया है कि उसमें देरी आई है, बस
इसमें देरी आई है क्योंकि अगर ईरान को फ्री फ्लो छोड़ दिया जाता तो जिस तेजी से वो जा रहा था वो कुछ महीनों में वो वेपन ग्रेड जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो तैयार कर सकता था। जैसे एक साल का वक्फा कहा गया है कि अभी मिनिमम टाइम उसको इस ग्रेड पे यूरेनियम को लाने में एक साल लगेगा। एक साल इंटरनेशनल कम्युनिटी सोचती है कि काफी है बाय अदर मीन्स रोकने के लिए ईरान को, बाय इम्प्लीकेशन या उसमें हिडन मैसेज ये है कि मिलिट्री सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक साल का वक्फा जो कि पहले 2 से 3 महीने का जो ब्रेकआउट टाइम, जैसा कि यूएस कहती है कि ब्रेकआउट टाइम था, 2 से 3 महीने के ब्रेकआउट टाइम को उन्होंने एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दिया है। और ये स्टेटस को उन लोगों ने ऐसा मेकनिज्म तैयार किया कि ये स्टेटस बना रहे अगले 10 साल तक, और इसके एवज में या इसके बदले में जो ईरान को मिल रहा है, ऑफकोर्स ईरान के पास अब ये पावर नहीं है कि वो 2-3 महीने में वेपन ग्रेड इनरिचमेंट कर ले यूरेनियम का, लेकिन उसे क्या मिला है, वो ये मिला है कि बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर उसको ट्रेड में मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंकर के हिसाब से 150 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट अब खुल चुका है ईरान में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में होड़ लगी है। दैट मीन्स कि इस लेवल का बिजनेस ईरान कर सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। पिछले कुछ दिनों में निगोशिएशन में सबसे ज्यादा बहस हुई है वो एम्बार्गो के ऊपर। ईरान का मानना ये था, ईरान का आर्गूमेंट ये था कि अभी आईसिस के खिलाफ जो इसकी जंग है इसकी वजह से इसको आर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यही एक रीजन था जो जेन्युइनली भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लग रहा था कि एम्बार्गो हट जाए तो उसमें कुछ मेरिट है। लेकिन ईरान का जो टेंटेड पास रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के माइंड में और जो सस्पिशन इन लोगों के दिमाग में घर कर रखा है कि ईरान कोई ऐसा हरकत भी कर सकता है जिसकी वजह से इनके अलायंस को नुकसान पहुंच सके, यानी सऊदी अरेबिया इसराइल को, जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरह से एम्बार्गो हटाना नहीं चाहते थे, तो एक मिडवे अप्रोच इन लोगों ने लगाया कि चलो ठीक है 5 साल तक हम एम्बार्गो लगा देते हैं। उसमें भी अभी फर्दर डिटेल्स आप देखेंगे धीरे धीरे आ रहा है कि इन लोगों ने इस तरह से कुछ कैटेगराइज किया है कि ठीक है डिफेंसिव ऑयल डिफेंसिव आर्म्स होता है, ऑफेंसिव आर्म्स होता है। डिफेंसिव आर्म्स में भले ही किसी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी ये दे दे, लेकिन ऑफेंसिव आर्म्स आर्मामेंट्स में ये लोग कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट वो टेक्निकलिटीज लगाएंगे।
ये थे दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के रिसर्च फेलो आसिफ शुजा। और इस सहमति पर अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये बताने के लिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी हमारे साथ है। सलीम, आपके पास आने से पहले एक हम बाइट सुनवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का इस सहमति, इस समझौते के बारे में क्या कहना था।
आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस डील विल मीट द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
राष्ट्रपति ओबामा कह रहे थे मुझे भरोसा है कि ये समझौता अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। मैं इस समझौते के सफल कार्यान्वयन के खिलाफ किसी भी कदम को वीटो करूंगा। सलीम, ये जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है राष्ट्रपति ओबामा की, जो एलिमेंट्स हैं यूएस कांग्रेस में, क्या वो और इस समझौते को कैसे देख रहे हैं?
जी विनीत, यहाँ पर काफी मिली जुली राय सामने आ रही है और लगता यही है कि ज्यादातर जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में राय बटी हुई है, रिपब्लिकन जो हैं जो विरोधी पार्टी के हैं यहाँ राष्ट्रपति ओबामा के, तो वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं ज्यादातर, जिनमें से एक दो शायद मिले जो अभी इस डील के कुछ हक में दिखते हों, और डेमोक्रेट्स भी कुछ हैं जो इसराइल के हक में ज्यादातर वोट करते हैं, तो उनको भी ये डील पसंद नहीं है, लेकिन वो भी चंद हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में राष्ट्रपति ओबामा को अभी 5 दिन के अंदर ये पूरी डील रखनी होगी, जो कि जरूरी है। वहां पर एक समझौता हुआ था कांग्रेस के साथ राष्ट्रपति ओबामा का, अब उसके साथ साथ एक रिपोर्ट जॉन केरी साहब जो विदेश मंत्री हैं वो रखेंगे ये रिपोर्ट कि भाई ईरान जो है इस पूरे समझौते को किस तरह आगे ले जाएगा और उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि वो अमल कर रहा है इस समझौते पे। तो ये दो चीज अभी फौरन होनी है 5 दिनों के अंदर, और उसके बाद 60 दिन होगा कांग्रेस के पास कि वो इस पूरे समझौते को देखे, देख के फिर वो जिस तरह वोट करना हो तो करे। और सेनेट और हाउस दोनों में आपको याद है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो है उसमें बहुमत है, इसलिए कहा यही जा रहा है कि ये डील वहां रिजेक्ट कर दी जाएगी।
जी सलीम, ये जो जिस तरह से डील, हालांकि भी डिटेल्स छन छन के आ रही हैं, परसेप्शन क्या है वहां अमेरिका में कि ये डील क्या ईरान के की तरफ टिल्ट कर रही है, क्या कहा जा रहा है इस पर?
जी कहा ये जा रहा है, जो यहाँ पर आमतौर पर जानकार लोग हैं तो उनको ये कहना है उनका ये कि भाई बहुत सख्त डील थी और ये समझौता जो है कूटनीतिक स्तर पर हुआ है, जहाँ पर लेन देन की जाती है, ये कोई नहीं करता है कि भाई आप जो कहें वो सब मान लिया जाए। तो इस तरह से वो लोग जो जानकार हैं वो तो मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वही खेमे बटे हैं जो रिपब्लिकन या हार्ड लाइनर्स हैं और वो जो डेमोक्रेटिक हैं और जो उस तरह से देखते हैं कि भाई यहाँ ये राष्ट्रपति ओबामा का प्रशासन जो है इस मामले में सही नीति अपना रहा है। तो यही अभी बटा हुआ है, जितनी क्षण के बाद
बहुत बहुत संक्षेप में अगर आप 20 सेकंड में बता पाए सलीम, इसके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, अंदरूनी राजनीति है अमरीका की, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में?
जी बिल्कुल, यहाँ काफी बयान शुरू हो चुके हैं। स्कॉट वॉकर, एक जो अभी इन्होंने कल अनाउंस किया है विस्कॉन्सिन के जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी के लिए, तो वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर है। मार्को रूबियो साहब दूसरे कैंडिडेट एक हैं प्रत्याशी, तो वो भी कह रहे हैं कि ये तो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। अभी जॉन बेनर जो स्पीकर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये हमें पत्ते ही मंजूर नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता तीसता सेतलवाद के मुंबई स्थित घर और दफ्तर पर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने छापे मारे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ये कार्रवाई तीसता की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशंस के कथित गैर कानूनी तरीके से विदेशी चंदा लेने से संबंधित है। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के गुजरात यूनिट ने मंगलवार सुबह मुंबई में तीसता सेतलवाद के घर पर छापेमारी की। तीस्ता सेतलवाद और उनके पति जावेद आनंद द्वारा चलाए जा रहे स्वयंसेवी संस्था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस तथा सबरंग पब्लिकेशंस एंड कम्युनिकेशंस पर यह आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से विदेशों से चंदा इकट्ठा किया है। किसी भी स्वयंसेवी संस्था के लिए विदेशों से चंदा इकट्ठा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत दी जाती है। तीस्ता सेतलवाद तथा जावेद आनंद पर यह आरोप है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के विदेशों से लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। इस मामले में कुछ महीने पहले गुजरात में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके चलते यह छापेमारी मंगलवार को मुंबई में की गई। छापेमारी में क्या कुछ सबूत CBI के हाथ लगे हैं या कुछ कागजात CBI के हाथ लगे हैं, इसके बारे में अब तक कोई विस्तृत जानकारी एजेंसी की तरफ CBI की तरफ से नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में तीस्ता सेतलवाद ने कहा कि उन पर केस दाखिल होते वक्त ही उन्होंने CBI को एक पत्र देकर ये कहा था कि भविष्य में किसी भी तरह की तफ्तीश में वह तथा उनके पति जावेद आनंद CBI का पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में छापेमारी करने पर उन्होंने एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जबकि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार थे, फिर भी यह छापेमारी कर रहे हैं, अब यह मामला कहां तक जाएगा बता नहीं सकते।
मुंबई से ये थे अश्विन अघोर, और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आईपीएल में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच करने वाली लोधा समिति ने आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा को गैर कानूनी सट्टेबाजी का दोषी पाया गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले बहुप्रतीक्षित समझौते की आज घोषणा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समझौते का स्वागत हो रहा है, लेकिन इसराइल ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया है। भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आज एक धार्मिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 27 लोग मारे गए। और अफ्रीकी देश रवांडा में संसद ने एक ऐसे संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसके बाद राष्ट्रपति पॉल कागामे तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अशोक कुमार। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दी अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।